एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। यह ऑडियो सारांश एआई की मदद से तैयार किया गया है।
आज हम एक ऐसी किताब की दुनिया में उतर रहे हैं जिसे पढ़ने के बाद मतलब हजारों लोग गूगल पर एक ऐसे बैंड को ढूंढने लगते हैं जो
कभी था ही नहीं।
हाँ बिल्कुल, टेलर जेंकिंस रीड की डेजी जोन्स एंड द सिक्स।
ये कमाल का धोखा है, एक बहुत ही खूबसूरत फरेब। रीड की यही तो खासियत है, वो फिक्शन को इतनी सच्चाई से लिखती है कि आपको लगता है आप इतिहास का कोई भूला हुआ पन्ना पढ़ रहे हैं।
ये कहानी है 70 के दशक के एक काल्पनिक रॉक बैंड की,
उसके बनने की, उसके मतलब एकदम टॉप पर पहुंचने की, और फिर
अचानक सब खत्म।
हाँ, रातों रात 12 जुलाई 1979 को शिकागो में अपने सबसे कामयाब शो के बाद वो बैंड टूट गया।
और सवाल यही है क्यों।
और कहानी कहने का जो तरीका है वो इसे सबसे अलग बनाता है। ये कोई मतलब सीधी सादी कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, इसे एक म्यूजिक डॉक्यूमेंट्री के ट्रांसक्रिप्ट की तरह लिखा गया है।
मतलब सारे इंटरव्यूज हैं।
हाँ, सालों बाद बैंड के सदस्य, उनके मैनेजर, दोस्त सब अपनी अपनी कहानी बता रहे हैं, और यहीं से कहानी का असली जादू शुरू होता है।
क्योंकि हर किसी का सच अलग है।
बिल्कुल, हर किसी की याददाश्त अलग है। ये हमें एक पाठक से एक जासूस बना देता है जो इन अलग अलग बयानों के बीच सच को खोज रहा है।
और उस सच के केंद्र में है दो लोग, दो ध्रुव जो एक दूसरे को खींचते भी हैं और
धकेलते भी हैं। डेजी जोन्स और बिली डन।
कौन थे ये दोनों असल में?
डेजी जोन्स वो एक तूफान है, बेपनाह टैलेंटेड, खूबसूरत, लेकिन अंदर से उतनी ही बिखरी हुई।
अमीर घर में पैदा हुई पर
उसे कभी वो तवज्जो नहीं मिली जो वो चाहती थी। उसकी पूरी जिंदगी बस इसी कोशिश में गुजरी कि लोग उसे एक कलाकार की तरह देखें, एक गीतकार की तरह,
न कि किसी की प्रेरणा या महबूबा।
सही बात है, उसकी आवाज में जादू था, पर उसकी आदतें वो खुद को तबाह करने वाली थीं।
और दूसरा ध्रुव बिली डन।
हाँ, द सिक्स का लीड सिंगर। बिली को हर चीज पे कंट्रोल चाहिए, अपने संगीत पर, अपने बैंड पर, अपनी जिंदगी पर,
और सबसे ज्यादा अपने अंदर के राक्षसों पर।
बिल्कुल, वो नशे की लत से लड़ चुका है और अब उसका एक ही मकसद है, एक अच्छा पति और पिता बनना। संगीत उसका जुनून है, पर परिवार उसकी जमीन है।
और इन दोनों के बीच, इन दोनों के तूफान के बीच एक रोशन मीनार की तरह खड़ी है कैमिला डन, बिली की पत्नी। वो कहानी की नैतिक धुरी है, लेकिन क्या वो सिर्फ इतनी ही है?
ये एक बहुत जरूरी सवाल है। कैमिला सिर्फ एक पीड़ित पत्नी नहीं है, वो कहानी की सबसे समझदार और शायद सबसे मजबूत इंसान है।
वो डेजी को एक दुश्मन की तरह नहीं देखती।
नहीं, वो उसे एक और दर्द में डूबी औरत की तरह देखती है। वो जानती है कि बिली के दिल में डेजी के लिए क्या है, लेकिन वो ये भी जानती है कि प्यार सिर्फ एक जुनून नहीं होता,
प्यार एक चुनाव होता है।
हाँ, एक वादा, और उसका बिली के साथ रहना उसकी मजबूरी नहीं, उसका फैसला था।
और फिर बैंड के बाकी सदस्य भी हैं, ग्राहम डन, बिली का भाई, कैरन सिरकू।
कैरन जो अपने समय से बहुत आगे थी, एक ऐसी कीबोर्डिस्ट जो साफ कहती है कि उसका करियर पहले आता है।
और एडी राउंड्री जो हमेशा बिली से नाराज रहता है।
हाँ, ये सब मिलकर एक प्रेशर कुकर जैसा माहौल बनाते हैं।
तो चलिए कहानी के सफर पर चलते हैं। ये दो अलग अलग दुनियाएं, डेजी की और द सिक्स की, ये टकराती कैसे हैं?
तो कहानी शुरू होती है जब द सिक्स पिट्सबर्ग से लॉस एंजलिस आता है। उन्हें कुछ कामयाबी मिलती है, लेकिन पहले ही टूर पर बिली नशे में बुरी तरह फंस जाता है
और लगभग सब कुछ खो देता है।
हाँ, और यहीं एक मोड़ आता है। बिली रिहैब से लौटता है, अपने परिवार के लिए बदलने को तैयार, लेकिन उसके गानों से वो आग गायब हो जाती है।
और तभी उनका प्रोड्यूसर टेरी प्राइस एक फैसला लेता है।
हाँ, वो डेजी जोन्स को बुलाता है एक गाने हनी कोम के लिए, बिली के साथ गाने के लिए।
और यहीं से जादू भी शुरू होता है और तबाही भी।
बिल्कुल, वो रिकॉर्डिंग सेशन मतलब कमरे में जैसे बिजली दौड़ गई थी। डेजी ने बिली के गाने को सिर्फ गाया नहीं, उसे अपना बना लिया,
लिरिक्स बदल दिए।
हाँ, और जब उनकी आवाजें साथ में गूंजी तो वहां मौजूद हर कोई समझ गया कि ये कुछ बहुत खास है। ये केमिस्ट्री थी, ये टकराव था, ये जादू था।
और हनीकॉम जबरदस्त हिट हो जाता है।
और फिर डेजी बैंड में शामिल हो जाती है। डेजी जोन्स एंड द सिक्स का जन्म होता है और वो मिलकर अपना सबसे फेमस एल्बम बनाते हैं, ऑरोरा।
और ये एल्बम बनाने का दौर एक रचनात्मक भट्टी जैसा था।
बिल्कुल, उनके झगड़े जितने मशहूर थे, उनका संगीत उतना ही शानदार। असल में उनके गाने वो एक दूसरे से की जाने वाली बातें थीं।
जो वो आमने सामने कह नहीं पाते थे।
हाँ, वो अपने गानों में लिख रहे थे। एक निजी भावनात्मक युद्ध का वो एक सार्वजनिक दस्तावेज बन गया।
ऑरोरा उन्हें दुनिया के शिखर पर पहुंचा देता है, लेकिन
लेकिन शोहरत की कीमत होती है।
आखिरी टूर पर ऐसा क्या होता है कि सब बिखर जाता है?
मंच पर उनकी केमिस्ट्री कमाल की थी, पर मंच के पीछे यही केमिस्ट्री रिश्तों को जला रही थी। डेजी का नशा बढ़ता गया, बिली अपने संयम की लड़ाई लड़ता रहा।
और इसी बीच बैंड के अंदर भी दरारें पड़ रही थीं।
हाँ, कैरेन और ग्रहम का रिश्ता एक बहुत दर्दनाक मोड़ पर आकर टूट जाता है।
जब कैरेन अपने करियर को परिवार पर तरजीह देती है।
बिल्कुल, और आखिरकार शिकागो के उस आखिरी शो में सब कुछ एक साथ टूट जाता है। डेजी को एहसास होता है कि बिली कभी कमिला को नहीं छोड़ेगा।
और वो बैंड छोड़ देती है।
हाँ, उसी रात एडी भी चला जाता है, और बस एक पल में दुनिया का सबसे बड़ा बैंड इतिहास बन जाता है।
लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उपन्यास का जो फॉर्मेट है वो हमें सालों बाद की दुनिया दिखाता है।
और अंत में एक बहुत ही भावुक रहस्य खुलता है।
हमें पता चलता है कि ये पूरी कहानी कौन लिख रहा है।
हाँ, ये सारे इंटरव्यूज असल में बिली और कैमिला की बड़ी बेटी जूलिया रिकॉर्ड कर रही है। वो अपने माता पिता के अतीत को समझना चाहती है।
और फिर
अंत में कैमिला का एक खत सामने आता है। वो इस कहानी का सबसे मार्मिक हिस्सा है। वो खत उसने अपनी मृत्यु से पहले लिखा था।
उसमें क्या लिखा था?
उस खत में कैमिला बिली से कहती है कि वो डेजी को फोन करे और अब और वक्त बर्बाद ना करे।
वो कहती है कि किसी की जिंदगी में एक से ज्यादा महान प्रेम हो सकते हैं।
हाँ, ये खत ये पूरी कहानी को एक नई और बहुत गहरी समझ देता है।
तो इस कहानी का सार क्या है? मतलब ये सिर्फ एक रॉक बैंड की कहानी तो नहीं है?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दिखाती है कि महान कला अक्सर गहरे दर्द से पैदा होती है, और रोरा एल्बम इसका सबसे बड़ा सबूत है।
और सच्चाई और याददाश्त का विषय भी बहुत अहम है।
हाँ, कि कोई एक सच नहीं है, बस अलग अलग कहानियां हैं जो हर किरदार अपनी भावनाओं के रंग में रंग कर बताता है।
और औरतों के किरदारों को भी बहुत खूबसूरती से गढ़ा गया है। डेजी, कैमिला और कैरेन
तीनों ही अपने अपने तरीके से एक पुरुषों की दुनिया में अपनी जगह बनाती हैं और अपनी शर्तों पर जीती हैं।
ये कहानी इतनी असली लगती है कि लोग सच में इस बैंड के गाने इंटरनेट पे ढूंढने लगते हैं।
हाँ, और शायद ये हमें सिखाती है कि प्यार कई तरह का होता है। एक वो जिसके साथ आप जिंदगी बनाते हैं,
और एक वो जो आपकी रूह में आग लगा देता है।
और शायद ये भी बताती है कि सबसे गहरे रिश्ते कभी मरते नहीं, भले ही वो दशकों तक दबे रहे। ये कला दिल टूटने और जिंदगी में दूसरे मौके की उम्मीद की एक अविस्मरणीय कहानी है।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।